हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19, 20 एंड 21। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तद्धाम वृंदावनम रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम प्रेम पुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषम्, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवनाख सादया, ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इस स्तर में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को म्रियमाण व्यक्ति जिसकी मृत्यु अत्यंत ही निकट आ गई है उसको क्या करना चाहिए। म्रियमाण व्यक्ति जो मरने वाला है, मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है, अब उसे सबसे पहले क्या ऐसा करना चाहिए कि उसको अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए और वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके विषय में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। अंतकाले जो तो पुरुष आगते गत सात्वसः, सबसे पहले मृत्यु को स्वागत करना चाहिए, मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए और उसके साथ साथ चिंद्या संग शस्त्रेण स्पृहा देहेनु ये चतम, हृदय के अंदर जो आसक्ति है भौतिक वस्तुओं के साथ, सबसे पहले अपनी देह के साथ कि इस देह के द्वारा अब मुझे सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है वो समाप्त कर देनी है और उसके साथ साथ देह से रिलेटेड जितने संबंधी हैं उसकी ओर की समस्त आसक्ति को खत्म करके गृहात प्रवर्जितो धीरा प्रवजित आचार्य बन के आगे कहाँ चले जाना है, पुण्य तीर्थ जलाप्लुत, पुण्य तीर्थ में जहाँ पर पवित्र जल हो वहाँ पर जाना है और शुचो विविक्त आसीन विधिवत कल्पितासने और वहाँ पर जल से पवित्र होना है, बारंबार स्नान करना है गंगा यमुना इत्यादि तीर्थों का और उस तरह उसके बाद एक अच्छा सा आसन बनाना है, विधिवत आसन बना के उसके ऊपर इस आसन जमा कर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, बैठना उसके ऊपर और अभ्यसेन मनसा शुद्धिम त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरम परम ओम, इसको त्रिविध अक्षर बोलते हैं। तो इसका अभ्यास करना है हृदय को शुद्ध करके और उसके साथ साथ मनो यच्छे जित श्वासो, मन को कंट्रोल करना है, श्वास को जीतना है और साथ में ब्रह्म बीजम अविस्मरणम, जो भी करो साथ में भगवान का पवित्र नाम सदैव चलते रहना है और यम नियम आसन के बाद प्रत्याहार क्या नहीं करना है, नियत सिद्ध विषयेभ्यो ख्यान, ख्यान कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों के समस्त भोगों से इंद्रियों को हटाना है, विषयों से हटाना है और मनसा बुद्धि सारथ, कैसे मन को भी भगवान के अंदर लगाना है बुद्धि को सारथी बनाकर। ये पांच इंद्रियां पांच गुणों की तरह हैं और मन लगाम है और मन की लगाम किसको देनी है, बुद्धि के हाथ में, बुद्धि को सारथी बनाना है ताकि जो ये रथ है वो अपने वास्तविक गंतव्य को पहुंच सके। क्योंकि ये जो रथ के जो घोड़े हैं ना पांच घोड़े, वो बहुत मुंह जोड़ घोड़े हैं, अपनी करते हैं, भागना चाहते हैं और जब कोई ऐसा मुंह जोड़ घोड़ा होता है उसको जब तक कोई अच्छा साथी नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, जीवात्मा को खाई में गिराना चाहते हैं। लेकिन यदि सारथी पटु होता है तो जीव आत्मा को गिरने नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि भौतिक वस्तु और विषय जो है वो हमारा सर्वनाश करने वाले हैं और इस तरह से बुद्धि से काम लेना चाहिए और मन की लगाम को कस के पकड़ना चाहिए ताकि वो घोड़े जो हैं वो गलत दिशा की ओर ना जा सके। आगे मन कर्म भिराक्षिप्तम शुभार्थे धारयेद्या, मन कर्म भिराक्षिप्त, मन को सोचने के लिए शुभार्थे धारयेद्, शुभ अर्थ यानी भगवान के विषय में सोचने के लिए मन को शुभ अर्थ की धारणा करने का संकल्प करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए मन को बुद्धि के द्वारा कि केवल यहाँ पर यदि कुछ सोचना है तो केवल भगवान के विषय में चिंतन करना, क्योंकि बाकी कृष्ण के अतिरिक्त जो भी चिंतन किया जाएगा वो सब अशुभ है और उसी के द्वारा वो समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उस समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी याद आ गया तो फिर कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मन केवल कृष्ण के विषय में ही सोचे। तो यहाँ पर प्रतिहार और धारणा के विषय में कुछ बताया थोड़ा, उसके बाद आज श्लोक नंबर 19 में ध्यान के विषय में बताते हैं। वे क्या कहते हैं, तत्रैकावयम् धायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम् युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदम् तत्परमं विश्वो मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयम् वयवम् ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयम् युक्त्वा ततः किञ्चिन्न न स्मरेत् पदम तत्परमं विश्वो मनो यत्र प्रसीदति तत्रैकावयवं ध्यायेत् तत्रैकावयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत् पदम तत्परमं विश्वो मनो तत्र प्रसीदति तत्रैकावयवम् एकावयवम् यानी एक के ऊपर, अवयवम का मतलब होता है भगवान के मुख्तलिफ अंगों के अंदर। जैसे ध्यायते यानी ध्यान करना है, ध्यान कैसे करना है, मन इतना चंचल है कि एक वस्तु के ऊपर टिकता नहीं है, तो मन को क्या करना है, अव्ययम का मतलब होता है वो भगवान के ऊपर ही उसको केंद्रित करना है। लेकिन कैसे केंद्रित करना है कि कभी भगवान के सुंदर नेत्र, के भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं उनकी ओर, कभी भगवान की बांसुरी की ओर, कभी भगवान के सुंदर हस्तकमल की ओर, कभी भगवान के चरणों की ओर, कभी भगवान की वनमाला की ओर, कभी भगवान के कटी कमल की ओर, कभी भगवान के लाल लाल होंठों की ओर। तो मतलब ऐसा है कि भगवान के ऊपर ही घूम, क्योंकि मन एक जगह पर कंटिन्यूस नहीं रह सकता। मन इतना चंचल है कि अगर एक जगह पर 3 मिनट तक भगवान के ध्यान में यदि एक ही चीज में वो लग जाए ना, तो उसको समाधि कहते हैं। मन मतलब यहाँ से ही सोचना चाहिए कि मन इतना ज्यादा चंचल है, चिंतन करता रहता है, उसको हर वक्त वैरायटी चाहिए अलग अलग। तो भले ही वो अलग अलग चिंतन करना चाहता है, उसको फ्रीडम देना है, लेकिन सिर्फ ये मन जो है वो केवल और केवल भगवान के विभिन्न अंगों के अंदर ही चिंतन करता रहे। कभी भगवान की किसी लीला का चिंतन कर दिया, कभी भगवान के मुस्कुराहट का, भगवान जो इतना सुंदर सुंदर मुस्कुराते हैं उसको, कभी भगवान के घुंघराले बालों में, कभी भगवान की वैजंती माला में, तो कभी भगवान के वस्त्र में, कभी भगवान की कटी में, कभी भगवान के आभूषण में, कभी भगवान के ललाट पर, कभी भगवान की, मतलब भगवान के अंदर ही मन को ध्यायित ध्यान कराना है। और अव्युच्छिन्नेन चेतसा पूर्ण रूप से विचलित हुए बिना, कंटिन्यू अखंड, मतलब बहुत ही ये बात के लिए सावधान रहना है कि चिंतन केवल भगवान के स्वरूप का होना चाहिए। अव्युच्छिन्नेन चेतसा, चित्त भगवान से हटकर दूसरी किसी वस्तु के अंदर नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के अंदर ही चित लगना चाहिए। मनो निर्विषयम युक्त्वा, मनो यानी मन को निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना, मन को इंद्रिय विषय का भोग किसी सूरत में भी उस समय नहीं देना है। युक्त्वा
इस तरह से सिर्फ भगवान के साथ ही युक्त कर देना है मन को। और तदा किंचन न स्मरेत, किंचन कुछ भी न स्मरेत, मतलब भगवान के अतिरिक्त, भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त किसी और वस्तु का स्मरण नहीं होना चाहिए उस समय। केवल और केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, भले भगवान के ही स्वरूप में मन घूमता रहे। अखंड चित्त से, अच्छन्न चित्त सा, यानी अखंड चित्त से भगवान के समस्त अंगों पे ध्यान होना चाहिए, भगवान के हाथों पे, भगवान की भुजाओं पे, भगवान की चरणों पे, भगवान की एक एक अंग के ऊपर चिंतन होता रहे। भगवान के ध्यान से मन को बाहर नहीं निकालना है, इसको बोलते हैं मनोनिर्विषयम युक्ता तथा किंचन न स्मरेत। इसके अतिरिक्त और कुछ स्मरण करने के लिए मन को बाध्य कर देना है कि केवल भगवान के अंदर ही आपको टिकना है। और इससे क्या होगा, पदम तत् परमम विष्णु मनो तत् यत्र प्रसीदते। पदम, पदम मतलब अव्यक्तित्व को, तत्व परम, फिर उससे वह वास्तविक परम की प्राप्ति होगी। मनो यत्र प्रसीदते, प्रसीदते का मतलब होता है ये भगवान का स्वरूप इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि भगवान इतना सुंदर है, इतना आकर्षित है, कृष्ण इतना रसमय है कि यदि वहां तक केंद्रित हो गए मन तो मन बहुत आनंदित हो जाता है। कृष्ण का स्वरूप मन को प्रसन्न करने वाला है। कृष्ण के स्वरूप का चिंतन यदि कृष्ण के स्वरूप में चिंतन बैठ गया, मन यदि उसके विषय में सोचना शुरू हो गया, यदि मन कृष्ण के स्वरूप के चिंतन करने में सक्सेस हो जाता है ना, तो क्या होगा, मनो यत्र प्रसीदति, वास्तव में मन का आनंद इसी में है। हम सोचते हैं, मन तो कंटिन्यूअस, मन का काम है सोचना, मन तो सदैव किसी न किसी वस्तु के विषय में सोचता रहता है और सदैव वही वस्तु मन को ग्लानि प्रदान करती है। किसी भी वस्तु में मन लग गया ना तो वही वस्तु आपके दुख का कारण बनती है, लेकिन फिर भी उसके विषय में या भौतिक जगत में किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो मन ना चाहते हुए भी बार बार उसी के विषय में सोचता है। फिर परेशान हो जाता है वो व्यक्ति कि ये मन क्यों उसके विषय में सोच रहा है, और उसके विषय में सोच सोच के आनंद का अनुभव कर रहा होता है वो। उसको भले वो प्रेमी जो है वो उसको इतना प्रेम नहीं करता हो, दुख देता हो, फिर भी उसके विषय में सोचता है तो प्रीतम को आनंद आता है। तो यहाँ पर ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि भौतिक वस्तु भी किसी को यदि आनंद देती है, भौतिक व्यक्ति के विषय में भी यदि हम सोचते हैं तो हृदय आनंदित होता है, तो फिर जब हम वास्तव में जो हमारे हितैषी हैं, सुहृतम सर्वभूतेषु, जो वास्तव में हमारा कल्याण करना चाहते हैं, जिससे वास्तव में हमारा संबंध है, वास्तव में मन जो है उसका किसी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उनके साथ हमारा कोई भी संबंध, हम देखते हैं एक माता होती है, छोटा बच्चा जब उसको पैदा नहीं हुआ होता है जब तक, तब वो उसको जानती भी नहीं है, उस आत्मा के साथ उसका कोई है ना, पहले वो कहाँ पर है, कहीं कोई जानवर है, कोई क्या है, आदिवासी है, कोई क्या है, मतलब कुछ आ गया, बस किसी तरह से लिंक बन गया और वो आपके यहाँ पर उत्पन्न हो गया, तो वो आपकी आपका जीवन बन गया। माता का जीवन होता है पुत्र में, संतान में। तो जब उसके साथ कोई भी संबंध नहीं था तब तो है ना, आप उसको जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही आपका संतान बन गया तो कंटिन्यूअस आप उसके विषय में सोचते हो, उसने खाया नहीं खाया, वो सोया नहीं सोया, कभी माँ तो बच्चे के ये भी सोचता है, उसने मल त्याग नहीं किया आज, उसने ये हर वक्त सोचती है माँ कि आज इसने इतना थोड़ा खाया, आज इतनी देर सोया, छोटी छोटी चीज को भी हम लोग सोचते हैं। तो मन जो है वो सदैव चिंतन करता है, और जिस चीज का चिंतन करता है एक दिन वो दुख का कारण बनते हैं, ये फैक्ट है। और ऐसे हृदय में ऐसा लगता है कि मैंने सारा समय वेस्ट कर दिया इनके विषय में सोच सोच कर, लेकिन वास्तविक आनंद मनो यत्र प्रसीदति। अगर मन भगवान के विषय में सोचना शुरू कर देता है तो वास्तव में उसको आनंद आता है। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर के की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निमग्न हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि विष्णु की बहिरंग शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। ये बेवकूफ होते हैं जो सोचते हैं कि भौतिक वस्तु या व्यक्तियों के द्वारा आनंद संभव है। श्री रूपा जी बोलते हैं मूर्ख है, बहिरंग शक्ति से मोहग्रस्त होकर वो भगवान के अतिरिक्त कहीं और आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विष्णु तत्व के अनेक स्वरूप हैं और उनका जो आदि स्वरूप है वो कौन है? कृष्ण, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण है। अतएव विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य स्वरूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। अगर ध्यान करना है तो ध्यान करने के योग्य जो चरम सीमा है, वास्तविक जिसका ध्यान करना चाहिए, वो है कृष्ण। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण रूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। जैसे अभी हमने ध्यान के विषय में बताया था कि अव्यवयम यानी कि शरीर के समस्त अंगों का ध्यान करना चाहिए, चरणों का, फिर ऊपर से जाए तो भगवान के घुटनों का, फिर भगवान की जांघों का, फिर भगवान की कमर का, फिर भगवान के वक्षस्थल का, फिर भगवान के मुख कमल का, भगवान के अधर का, भगवान के नयन का, भगवान के श्री अंग के प्रत्येक अंग का चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी भी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इस तरह से एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों का चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। साफ बताया, ये जो हमारा शास्त्र है ना, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि देखो आप भगवान के अंश हो, भगवान निर्विशेष नहीं है, भगवान की सत्ता है, भगवान का स्वरूप है और जीव तभी आनंदित हो सकता है। मनो यत्र प्रसीदति पदम तत् परमं विष्णु, भगवान के स्वरूप के अंदर ध्यान लगाने से ही मन आनंदित होता है। तो किंतु भगवान यहाँ बताया गया कि भगवान निर्विशेष नहीं है, वे व्यक्ति तो हैं किंतु उनका शरीर हम जैसा बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव यानी ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की स्तुति ना की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न है, जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी हैं, अनुशासन की है। और जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव यानी ओंकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते,
उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि आज के युग में जो ये इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने जो विधि बताई है कि अकेले जगह पे जाना है, कुछ एक स्थान बनाना है, सब कुछ त्याग करके ऐसी जगह पे चले जाओ और वहां पर जाके एकांत में बैठ के भगवान के अंदर भगवान के ध्यान में लग जाओ ना, ये संभव नहीं है। सबसे ज्यादा ईजी क्या है, भगवान के मंदिर में चले जाओ और भगवान के विग्रह के ऊपर ध्यान लगा दो। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर किसी के लिए ये संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए मंदिरों में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्रीय रीति के अनुसार ध्यान करना चाहिए। कैसे है कि चरणों से भगवान के ऊपर इस तरह से प्रत्येक अंग का ध्यान लगाना है और ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जन सामान्य को अ ओम मु इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की उपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं है, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु का रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है, अतएव निर्विशेष ओंकार की उपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेष्ठकर है। यहाँ पर साफ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर आप खाली ध्वनि ओम के ऊपर ध्यान लगाने की चेष्टा करते हो तो ये बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के स्वरूप क्योंकि वो मनगढ़ंत नहीं है। साफ साफ यहाँ पर बताया पदम तत् परमम विष्णु मनोयत्र प्रसीदति कि भगवान के विग्रह के अंदर मन लगाना है और इसी से मन जो है वो आनंदित होता है। तत्रैकावयम ध्येयात् ध्यायेत् उसका ध्यान करना है और उसके साथ अविच्छिन्नेन चेतसा अपने मन को उससे हटाना नहीं है, केंद्रित करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं विष्णु के रूपों को चित्त को एकाग्र करना शेष कर से इनमें से पहली विधि दूसरी की उपेक्षा अधिक कठिन भी है। तो निराकार का स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है, इसे भगवान के साकार स्वरूप के अंदर ध्यान लगा के यदि कोई जीव मरता है तो बहुत ही सरलता से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि क्योंकि मन बहुत ज्यादा चंचल है और मन सदैव तमोगुण और रजोगुण से आच्छिक्त होता है, तो ऐसा मन भगवान के अंदर कैसे लगेगा? मन तो सदैव अलग अलग विषयों के विषय में सोचता रहता है, फिर भगवान के अंदर उसको कैसे टिकाया जाए? तो उसके विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बता रहे हैं। रजस्तमोभ्यामाक्षेप्तम् विमूढ़म् मन आत्मनः यच्चिद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् रजस्तमोभ्यामाक्षेप्तम् विमूढ़म् मन आत्मनः यच्चिद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् रजस्तमोभ्यामाक्षीप्तम् विमूढ़म् मन आत्मनः यच्चिद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम् रजस्तमोभ्याम रजोगुण और तथा तमोगुण के द्वारा आक्षिप्तम आक्षिप्तम यानी उससे ढका हुआ है, उद्वेलित है। रजोगुण और तमोगुण उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गए हैं, क्योंकि तमोगुण क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो मन एक कबूल करने के लिए स्वीकार करने के लिए एग्री ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने आप को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो यही सोचता है कि ये शरीर हूँ। तमोगुण के द्वारा हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकल नहीं पाते हैं और साथ साथ में रजोगुण है। रजोगुण क्या है कि बस केवल यही कमाना है कमाना है कमाना है, प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करना है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मन को सिर्फ यही रजोगुण तमोगुण ही आता है। तो विमूढ़ मन आत्मनः क्षमा रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम रज मतलब रजोगुण, तमह मतलब तमोगुण से आक्षिप्तम यानी उद्वेलित हो जाता है, छिप जाता है। मतलब मन की जो रियल स्वभाव है वो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा आक्षिप्त हो जाता है, आचेत हो जाता है। क्यों? विमूढ़ मन, विमूढ़, विमूढ़ मतलब अज्ञानता के कारण, मूड ऑफ इग्नोरेंस, वो कुछ जानता नहीं है, इसलिए वो उसको याद नहीं रहता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। बस खाली यही रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि जब जीव भौतिक गुणों के अंदर फंस जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 13.22 में, पुरुष प्रकृति स्थो ही भोंक्ति प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्त सदसद योनि जन्मसु, कि पुरुष वास्तव में आत्मा निर्गुण है, आत्मा के ऊपर कोई मलिनता नहीं है, कोई गुण नहीं है, सत्तो रजो या तमोगुण का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो भगवान ने कह दिया मामाई वंश, वो तो भगवान का अंश है ना, तो आत्मा को कभी भी ये गुण जो है वो आच्छादित नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि आक्षिप्तम विमूढ़ मन आत्मना, मन आत्मना मतलब हमारे मन को विमूढ़ करके, गुमराह करके और आक्षिप्त कर देते हैं रजोगुण और तमोगुण। इसको सेट करने के लिए, वापस से मन को स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए क्या करना है? यचेत धारणया धीरो, धीरो का मतलब होता है पहले आपको धीर बनना पड़ेगा। धीर मतलब भौतिक वस्तुओं से अपना आकर्षण समाप्त करके और क्या करना पड़ेगा? धारणया, धारणा के द्वारा। धारणया का मतलब ये होता है कि भगवान की धारणा, धारणा का मतलब है कि भगवान के स्वरूप में मन को बार बार जबरदस्ती लगाना। भले ही मन का स्वभाव चंचलता है, मन जाना चाहता है, बार बार जाता है, मन को बार बार खींच के भगवान के, वो कुछ और सोचने के बारे में, कुछ और की ओर आकर्षित हो, कोई भौतिक वस्तु की ओर कि ये वस्तु मुझे पसंद लगती है, मुझे खानी है, मुझे प्राप्त करनी है, या किसी भौतिक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, मन को जबरदस्ती खींच के भगवान, नहीं, वो सब आपके लिए हानिकारक है, वो सब वस्तुएं, वो सब आकर्षण जो है वो आपका सर्वनाश करेंगे। और यद खींच के बार बार भगवान के पवित्र स्वरूप के अंदर भगवान को, मन को लगाना, इसको कहते हैं यच्छे धारणया धीरो। पहले धीर बनो, भौतिक आसक्ति समाप्त करो, और उसके लिए क्या करना है? मन को बार बार खींच के भगवान के स्वरूप के अंदर लगाना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती है, और उसको स्कूल का होमवर्क मिलता है तो भी उसको करने की इच्छा नहीं होती है। मम्मी क्या बोलती है उसको? बेटा देखो, बैठो, होमवर्क करो, फिर एक एक थोड़ा सा लिखेगा, फिर वापस बोलेगा मुझे नहीं, मुझे जाना है, बाहर जाएगा, चॉकलेट खाना है, उसको बार बार बोलेगा मुझे पानी पीना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बार बार जाएगा। फिर माँ वापस उसको खींच के, देखो तुम ये नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें वापस उसको याद कराएंगे, जैसे तैसे करके उसको उसका होमवर्क करवाएंगे, उसको उसका जो स्कूल का स्टडी है उसको लर्न कराएंगे। यही कार्य करना है हमें मन के साथ, मन और बुद्धि। मन जो है वो बार बार भागता है, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, कथाओं को श्रवण करना अच्छा नहीं लगता, भगवान की सेवा अच्छी नहीं लगती। मन तो भौतिक आकर्षण चाहिए होता है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, तो बार बार मन को बुद्धि के द्वारा खींचना है कि देखो अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम्हें करना है नाम जप करना है, अपने भगवान का ध्यान करना है, भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित होना है, ये अगर नहीं किया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, ना केवल यह जिंदगी, न जाने कितनी और जिंदगियों में कभी कुत्ता बिल्ली और सुअर न बनकर आना पड़े। इसलिए नहीं नहीं, तुम्हें भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होना है, तुम्हें तो भगवान की ओर। तो इसको कहते हैं अच्छी धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। और इस तरह से यदि कोई करता है तो इस तरह से करने से हंति मना नष्ट हो जाएगा। या कृतम तत्कृतम मतलब इस तरह से उनके द्वारा की गई मलम यानी गंदगी जो भौतिक वस्तुओं का आकर्षण है वो धीरे 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 समाप्त हो ही जाएगा। भगवान के अंदर इतना रस है कि वो रस आना स्टार्ट हो जाए, शुरू में नहीं आता, जैसे बच्चे को शुरू में आनंद नहीं आता है स्टडी करने में, लेकिन फिर ऐसा ऐसा जब वो सीरियस हो जाता है उसे पता चल जाता है कि इसी से मेरा लाभ होगा, फिर ऐसा लगता है कि उसी में आनंद है। कुछ बच्चे तो सीरियस हो नहीं पाते, वो तो सारा जितना भी स्टडी होता है वो इसे, लेकिन जब कुछ वाकई में अपने वास्तविक लक्ष्य को समझ जाते हैं कि मेरा लक्ष्य इसी के द्वारा, फिर वो किसी भी भौतिक वस्तु और व्यक्ति की ओर आकर्षण करते ही नहीं। उनको पता है मेरा गोल क्या है, मुझे सीए करना है, मुझे आईआईटी का इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, फिर उसके जीवन का लक्ष्य स्टडी हो जाता है। उसी तरह से जब हमें ये जब भौतिक वस्तु भी एक व्यक्ति को केंद्रित करने के लिए सक्षम होती है, एक पॉइंट पर टिकाती है, तो जरा सोचिए तो सही, वो आध्यात्मिक वो दिव्य अप्राकृत जो रस है कृष्ण नाम का, कृष्ण स्वरूप का, वो भला जीव के मन को, जीव की बुद्धि को, जीव की इंद्रियों को कैसे केंद्रित नहीं करेगा। बस हमें थोड़ा सा अभ्यास करना है, आगे ये नाम का जो रस है वो खुद खींचेगा। तो हमें श्रद्धा के साथ स्टार्ट करना, ये केवल स्टार्ट में हमें ऐसा लग रहा होता है कि रस नहीं आ रहा, एक बार इस नाम का और भगवान के पवित्र, क्योंकि करोड़ों करोड़ जन्मों से भटक रहे हैं ना, तो भौतिक आकर्षण तो बहुत समय से है और इसके कारण वो आध्यात्मिक आकर्षण को डिवेलप करने में थोड़ी सी अरुचि होती है। लेकिन जैसे एक बार हो गया ना, फिर संसार का सारा सुख गंदगी की तरह लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं है कृष्ण नाम के अतिरिक्त, कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी ओर देखा जाए। अनुवाद देखिए, मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमोगुण द्वारा विचलित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं होते। केवल सत्वगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के द्वारा प्रकट होते हैं और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु की शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक जीव सात्विक स्थिति में नहीं आता है, केवल रजोगुण और तमोगुण में रहकर जीव कभी भी अपने आप को भगवत चेतना में स्थित नहीं कर सकता, क्योंकि रजोगुण में केवल कांचन यानी माया, ये जो धन दौलत है उसकी ओर आकर्षण के भौतिक सुविधाएं प्राप्त है, और उसके साथ साथ कामिनी अर्थात इंद्रिय तृप्ति के विषय में केवल उसको यही चाहिए होगा, तो फिर वो भगवान की ओर अपने आप को कैसे केंद्रित करेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं वे अपनी मनोवृत्ति को भगवान विष्णु की शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवसिखी निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो वास्तव में भक्तों, जीव तब तक आनंदित नहीं हो सकता है जब तक कि भगवान के स्वरूप के अंदर उसका आकर्षण नहीं होता है, क्योंकि जीव को मन को सदैव कुछ न कुछ चिंतन चाहिए, मन को कुछ ऐसा आध्यात्मिक चिंतन चाहिए कि भौतिक चिंतन की ओर से आकर्षण समाप्त हो जाए। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण में होते हैं वो भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते, फिर वो निर्विशेष निराकार स्वरूप की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि उन्नति करते हैं तो भौतिक वस्तुओं से आगे बढ़ते हैं तो उन्नति करके उधर, तो इस तरह से क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, परम के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध होता है। जब तक हृदय को भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक हृदय की मलिनता साफ नहीं होती है। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप, वो जीव आत्मा की वास्तविक उस गंतव्य है, वास्तविक इच्छा को पूरा वही कर सकता है। प्रेम की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, जीव प्रेम चाहता है और उसको प्रेमी साकार स्वरूप में, भगवान का जो स्वरूप है उसके स्वरूप में जब उसको प्राप्त होता है तभी अशुद्धता जीव के हृदय की समाप्त होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान भले बन जाओ, बहुत बहुत ज्ञानी बन जाओ, चिंतक चिंतन करो, शिष्य का चिंतन, लेकिन फिर कभी जाकर बहुत जन्मों के बाद आपको भगवान का स्वरूप का आकर्षण प्राप्त। ज्ञानवान माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर कि ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवसिखी निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया। ये हमें भगवान ने अवसर प्रदान किया है कि हम भगवान के साथ अपना संबंध, जो बिछड़ा हुआ संबंध है, भूला हुआ संबंध है, उसकी अनुभूति करें। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा सेवा भाव के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। तो यहाँ भौतिक वस्तु या व्यक्ति जो भी है उनको भगवान की सेवा में जोड़ा जा सकता है, ये जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से समस्त वस्तुओं को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाया जा सकता है और इसी तरह से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णतया, यानी इसी सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तो भगवान का सर्वेश्वरवाद सिद्धांत के, भगवान प्रत्येक वस्तु का स्रोत है तो और वही भोग्य है, मतलब भगवान ही भोगता है। भौतिक समस्त वस्तुएं भगवान की भोग्य हैं और भगवान भोगता है। तो जीव जो भक्त है वो जानता है कि किस तरह से प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में यूज किया जाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया, यच्छे धारणाया धीरो, कि जीव क्या करता है, भक्त क्या करता है, वो भले ही रजोगुण और तमोगुण का आकर्षण होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी समस्त चिंतन शक्ति को भगवान की सेवा में लगाता है, कि किस तरह से मन इधर उधर भागे और मन को भगवान की सेवा में लगाता है। इस तरह से हंतिया तत्कृतम मलम, और इस तरह से जब वो करता है तो सारा मल जो है, सारी अशुद्धता है, वो समाप्त हो जाती है। और इस तरह से जब वो धारणा करता है, मतलब भगवान के अंदर बार बार अपने मन को लगाता है, तो उससे क्या लाभ होता है, ये सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बता रहे। वे कहते हैं, यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीशत। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षत। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षत। भद्रमीक्षत, भद्र जो वास्तव में सर्व मंगलमयी है, सर्व कल्याणमयी है, ऐसे भगवान के अंदर आशु संपत्ति, मतलब आशु मतलब बहुत ही आसानी से और शीघ्र सफलता प्राप्त करता है योग भक्तिमयी सेवा से संबंध, और आश्रय मतलब शरण के अंतर्गत। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यस्याम संधार्यमाणायाम, यस्याम यानी ऐसे सुनियोजित स्मरण से, बार बार जो मन को भगवान के स्वरूप के अंदर लगाता है, भगवान के नाम के अंदर, इसी धारणा से ऐसी यस्याम संधार्यमाणायाम, और इस तरह के अभ्यास से में स्थिर होकर योगी नाम योगी जन, मतलब यदि कोई योगी धारणा तक पहुंचता है और कृष्ण के स्वरूप में बार बार मन को लगाता है, तो क्या होता है, भक्ति लक्षण, तो उसके अंदर भक्ति लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। बार बार मन में भगवान का चिंतन करते रहने से, भगवान के नाम का जप करते रहने से, भगवान के स्वरूप के अंदर ध्यान लगाने से प्रेम और भक्ति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आशु संपत्यते योग, आशु फौरन से वो भक्त जो है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। आश्रयम भद्रमेश्वरम, क्योंकि क्यों सफलता प्राप्त कर देता है, क्योंकि उसने भद्रम अत्यंत ही सही रास्ता, सर्व मंगलमयी सर्व कल्याणमयी भगवान की ओर अपना आकर्षण एकत्रित किया है। ये भगवान का जो स्वरूप का चिंतन है, वो योगी बहुत ही सुंदर वस्तु के ऊपर चिंतन कर रहा है, संसार की सबसे सुंदर वस्तु, संसार का सबसे रसमयी आनंदमयी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है। कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी वस्तु के चिंतन से आनंद संभव ही नहीं है। ये फैक्ट है कि संसार में आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए, कभी भी संतुष्टि संभव नहीं है। लेकिन यदि किसी का मन भगवान के चिंतन में बार बार लगाया जाता है, बार बार भगवान के चिंतन की ओर आकर्षित हो, भगवान के स्वरूप की और भगवान के नाम की ओर, तो समस्त साधनाओं में सबसे श्रेष्ठ साधना यही है कि अपने मन को भगवान के स्वरूप और भगवान के नाम की ओर आकर्षित किया जाए। जब आप भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित हो, भगवान के नाम का जप कर रहे हो, भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, योगिनो भक्ति लक्षण, फिर डेफिनेटली हृदय के अंदर भक्ति के लक्षण उत्पन्न होंगे, और बहुत ही जल्द भौतिक आकर्षण समाप्त होके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट होगा। ये हम देखते हैं संसारी वस्तुओं का आकर्षण भी ऐसा होता है जिसका हम कंटिन्यूअस आकर्षण विचार करते रहते हैं तो अन्य वस्तुएं छूटती जाती हैं। कोई भौतिक यदि किसी के साथ प्रेम भी हो जाता है ना तो भी भौतिक दूसरी वस्तुएं आकर्षित नहीं करती है, भले कितना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब एक वस्तु के ऊपर केंद्रित किया, भले वो अशुभ है, संसार का कोई भी प्रेम चाहे वो किसी के साथ भी हो, किसी भी रिलेशन के साथ हो, वो हमारे लिए अशुभ है, क्योंकि वो प्रेम आपको कृष्ण से दूर कर रहा है, कृष्ण और आपके बीच में वो बाधा बन रहा है। तो संसार का भले ही कितना ही महत्वपूर्ण संबंध हो वो अशुभ है, लेकिन भद्रमीक्षते यानी भगवान के साथ जो संबंध होता है जीव का वही कल्याणकारी है। और जब इस संबंध को जीव जोड़ने का प्रयास करता है तो अवश्य उसको सफलता प्राप्त होती है। अनुवाद देखिए, हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमयी व्यक्तिगत स्वरूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, योग में सफलता भक्तिमय भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भले आप अष्टांग योग भी करते हो लेकिन हृदय के अंदर यदि भाव नहीं है तो वो सब फिजूल है। हृदय के अंदर भाव होना बहुत आवश्यक है। तो भक्ति योग में सफलता कब प्राप्त होती है? जब भक्तिमय भाव हृदय में उत्पन्न होता है। सर्वेश्वरवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इस भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल प्रणिति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सर्वेश्वरवाद होते हैं यानी प्रत्येक वस्तु में भगवान का चिंतन करके वो यदि वो इस तरह से योग अभ्यास करते हैं तो रंच मात्र भक्ति जब उसके अंदर हो जाती है यहाँ श्रव किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण के बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता है। सफलता क्या है कि भगवान के अंदर मन केंद्रित हो जाए, समाधि लग जाए भगवान के ध्यान में। लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। और सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है, भले ही भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में भगवान का दर्शन करने से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है। एक न एक दिन उसको आनंद तभी आएगा जब वो भगवान की भक्ति करने में लगेगा। भले ही शुरू में वो निर्विशेषवादी है, वो भले ज्ञान योग पर चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके अवश्य भक्ति आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है। और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है। भगवान कहते हैं, क्लेशोधिका तरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसां अव्यक्ता हि कति दुःखं देहवत् भीरवाप्यते,
वो जो अव्यक्त स्वरूप में, क्योंकि एक देहधारी जीव जो है वो देह मतलब स्वरूप जो स्वरूप साकार स्वरूप वाले भगवान में है उसके अंदर बहुत आसानी से अपने चिंतन को केंद्रित कर सकता है। इसे भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भीरवाप्यते, तो जो देहधारी हैं उनके लिए अव्यक्त का चिंतन सदैव दुखदायक बनता है और ना केवल इस भौतिक जगत में उसका चिंतन दुखदायक बनता है बल्कि आध्यात्मिक जगत में जब निर्विशेष में लीन होने का समय आता है तो उसमें भी उसको आनंद नहीं आता है, क्योंकि जीव का एक जीव आत्मा का स्वभाव है प्रेम की प्राप्ति। तो जब वो स्वयं ही उस निराकार ज्योति में सम्मिलित हो जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रेम तभी संभव है जब एक प्रीतम हो, एक प्रेम प्रेमी हो। तो जब दो नहीं है, जीव आत्मा और परमात्मा, ये दो जब मिलते हैं तो ही आनंद संभव है। लेकिन इसके अलावा अगर वो स्वयं ही परमात्मा बन जाएगा तो फिर अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो आगे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है, यद्यपि निर्विशेषवादी भी काफी समय के बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ बता दिया है कि अंत में जीव जो है वो भगवान के स्वरूप की ओर आकर्षित होता ही है, क्योंकि जब तक उसको आनंद आता नहीं है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि आश्रयम भद्रमेश्वरते, तो जब भक्ति में भक्ति लक्षण, ये सुखदेव गोस्वामी स्वयं पहले निराकारवादी थे, पहले निराकार में उनका मन था, लेकिन जब उन्होंने भगवान के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान की करुणा के विषय में श्रवण किया तो भगवान के भक्त हो गए और श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पिताजी से सीख कर, वेद व्यास जी से उन्होंने पहले सीखा और परीक्षित महाराज को बताया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्लियर बता रहे हैं, यस्याम संधारयणा धार्यमाणायाम योगिनाम भक्ति लक्षण, इस तरह जब योगी को बार बार मन भगवान के चरणों में लगाएगा तो हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जब इस तरह से हृदय के अंदर भक्ति आशु संपद्यते योगम आश्रयम भद्रमेश्वर, तो डेफिनेटली जब इस तरह से हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति सेवा उत्पन्न होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमयी सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में लेकर करेगा, फिर भगवान के स्वरूप में उसका आकर्षण अवश्य उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर मरने की विधि बताइए कि किस तरह से मरना है आपको, और अंतिम लक्ष्य है भगवान को ही स्मरण करते हुए मरना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए मरना है, भगवान के स्वरूप के विषय में चिंतन करते हुए मरना है, तभी हमारा मरने का जो वास्तविक सिद्धि, जो वास्तविक सक्सेस है, ये मरने का टाइम जो है वो एग्जाम का टाइम है, और वो तभी संभव सफल होना है, उस एग्जाम का पास तभी होते हैं जब अंते नारायण स्मृति, जब अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, अंत में भगवान के पवित्र नाम का जप हो जाए, अंत में भगवान के अंदर फुल्ली हमारा मन केंद्रित हो जाए, तो उसके लिए अभ्यास हमें जीवन भर करते रहना है, क्योंकि इसी जीवन में एक क्षण तो अंतिम घड़ी होगा, और उसी का यदि ये सफल हो गए ना, इस चीज में सफल हो गए तो अवश्य भगवत प्राप्ति होगी और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ पतित के द्वारा श्रवण कर रहे हो, ये आप सबकी मेरे ऊपर कृपा है। एक और कृपा करिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छे से ये सेवा कर पाऊँ, अपनी साधना कर पाऊँ। हरे कृष्ण, हरे बोल।